हे दोस्तों, आप सुन रहे हैं और डिजिटल ब्लॉगर को और मैं हूँ असीम जुनेजा। इस चैनल पे हम बात करते हैं बिजनेस स्टोरीज की, सक्सेस और फेलियर दोनों, स्कैम, स्टॉक मार्केट फ्रॉड्स, इंडिया और दुनिया भर में क्या चल रहा है बिजनेस की दुनिया में, सब कुछ सुनने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। चार में रुक कैसे पाए अपने आप को?
देखिए सर, मेरी जो ये थी ना कैपिटल जो थी वो 20,000 थी और जो मेरा रिस्क था वो 2,000 रुपये था।
ठीक है, 10%। ओके,
और 1:3 मेरे टारगेट थे और चारों मेरे 8 हो गए अभी, इसीलिए मुझे उस महीने में 16% तक का प्रॉफिट मिला था।
तो इसको ट्रेडिंग स्विंग कर रहे थे?
हाँ स्विंग बिल्कुल सर, और मैं आज भी स्विंग ही करता हूँ। लोग मुझे आज मतलब बोलते, जो मेरे वही दोस्त जो आज गैम्बलिंग करते बोलते, अरे यार तुझे इतना समझ रहा है सब ये वगैरह, तू एकदम सिस्टम पे स्ट्रिक रह रहा है करके, तू ऑप्शन कर ले। पर मुझे पता है कि जो मेरे ऐसे भी पहचान के जो रियल में ऑप्शन करते अच्छी तरह करते और वो भी 10-12% बना लेते, पर सर इक्विटी में भी उतना पैसा बनाया जा सकता है स्विंग्स।
अच्छा, स्विंग पहले तो मुझे 2-3 सवाल हैं कि पहला सवाल तो है कि स्विंग क्यों करते हो, मतलब ऐसा क्या पसंद आ गया इस फॉर्मेट में? दूसरा कि जब करते हो स्विंग ट्रेडिंग तो तुम्हारा स्टॉक सिलेक्शन करने का और उसके होल्डिंग टाइम को पिक करने का कि कौन सा स्टॉक कितने समय के लिए होल्ड करके रखना है, कब एग्जिट करना है, इसका डिसीजन कैसे लेते हो?
देखिए सर, सबसे पहले का क्वेश्चन का जो मैं आपको आंसर देता हूँ कि मैं स्विंग ट्रेडिंग इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे इसके लिए अरबाज स्क्रीन के सामने रहना नहीं पड़ता। मैं सिर्फ नाइट को बैठे 1 घंटा अपना काम कर लेता हूँ, कल के लिए जो स्टॉक मेरे सिस्टम पे आए हुए होते वो मैं पिक कर लेता हूँ। एकदम सिंपल सिस्टम है सर मेरी, बता दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें?
हाँ हाँ, वही अगला सवाल भी यही था कि स्टॉक पिक कैसे करते हो तो। हाँ
सर, मैं कोई और इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, सिर्फ बोलिंजर बैंड लगाता हूँ, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है 20 DMA का बोलिंजर बैंड लगाता हूँ, और बोलिंजर बैंड पे सिर्फ इतना देखता हूँ कि लोअर बैंड के नीचे की साइड थोड़ी बहुत ग्रीन कैंडल किसने बनाई, किस स्टॉक में, वो भी निफ्टी में अगर ट्रेड करता हूँ वो निफ्टी 100 में ही सर, वही स्टॉक में स्कैन करता हूँ। लोअर बैंड पे अगर ग्रीन कैंडल बनाई हो तो उसके हाई पे में खरीद लेता हूँ सर और उसके नीचे में स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। वहाँ से सर वो अपर बैंड को टच होता है तो 1:3 टारगेट मुझे मिल जाता है, फिर वो चाहे कितने भी दिन में हो। कुछ स्टॉक है जो 2 या 3 दिन में ही दे देते हैं, कुछ 10-15 दिन तक रुलाते रहते हैं, पर टारगेट हिट करते हैं जरूर है, और स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं होते, पर रेशियो अच्छा है सर, मतलब मेरे लिए वो सिस्टम का रेशियो अच्छा।
तो अगर मैं थोड़ा समराइज करूँ तो ये देखते हो कि निफ्टी 100 के स्टॉक्स उससे नीचे का नहीं उठाने का, निफ्टी 100 का हिस्सा होना चाहिए, और
बुलेक्स कभी कभी निफ्टी 200 उससे कम उससे नहीं,
चलो 200 तक चले जाते हो, स्मॉल कैप सॉरी मिड कैप तक चले जाते हो।
कोई स्टॉक पिक करने को मिला ही नहीं तो निफ्टी 200 भी देख लेते।
इसमें लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप कौन सा होता है? ये लार्ज कैप तो होगा ही, थोड़ा मिड कैप भी होगा।
नहीं, लार्ज कैप में ही समझ सकते सर।
अच्छा, लार्ज कैप ही है सारा। तो अच्छा, उधर नहीं जाते कभी मिड कैप की तरफ?
मिड कैप की तरफ सर जाने का ऐसा मन ही नहीं किया क्योंकि कैसा है सर, निफ्टी 100 में ही मुझे स्टॉक मिल जाते पिक करने के लिए, और नहीं मिले तो फिर मुझे निफ्टी 200 की जरूरत पड़ती है, अगर जिस दिन नहीं मिलेंगे 200 में भी तब सोचूंगा।
चलो अभी निफ्टी 200 में मिल गया कोई ना कोई स्टॉक बेस्ड ऑन के बोलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है उसके नीचे ग्रीन कैंडल कौन बना रहा है, उसके हाई पे जाके खरीद लोगे
या फिर हैमर मतलब बुलिश कैंडल कोई।
अच्छा, बुलिश कैंडल बन गई और फिर उसके अपर का वेट कर, अपर बैंड को टच होने का वेट करोगे, इसमें वॉल्यूम चेक करते हो?
हाँ जी हाँ सर बिल्कुल।
अच्छा, मतलब वॉल्यूम का क्या इंडिकेटर रहता है कि किस बेस पे वॉल्यूम पिक करते हो?
सर कैसा है अभी देखिए, मैं सिर्फ अभी ओवरऑल वॉल्यूम कभी नहीं देखता उसमें क्योंकि उसमें ओवरऑल वॉल्यूम है ना मुझे एक तो कम मिलते हैं या फिर हायर भी मिले तो रेड में ही मिलते हैं। मैं सिर्फ उस कैंडल का वॉल्यूम चेक करता हूँ, उस डे के कैंडल का जो ग्रीन या फिर जो बुलिश बनी हुई है, अगर उसका वॉल्यूम मैं चेक करता हूँ, अगर उसका वॉल्यूम अच्छा हो तो ही मैं उसमें मतलब ट्रेड करूँगा, और वो भी कब ट्रेड करूँगा, अगर कल उस दूसरे दिन उसका हाई ब्रेक होता है तो ही मैं उसमें एंट्री करूँगा, वरना नहीं करूँ।
और पोजीशन किस बेस पे बनाते हो कि कितना क्वांटिटी लेके जाऊँ?
हाँ तो वो सर रिस्क जो मैं लेता हूँ उस पर अभी सर फिलहाल मैं 7,500 रुपये की रिस्क लेता हूँ, 1.5 लाख, और ये जो मैंने जमा की है सर 1.5 लाख, वो मैंने बाद में मैंने सीखा कि मार्केट में जो है ना थोड़ा थोड़ा पैसा फूकना चाहिए, बड़ी अमाउंट लाके फूको मत, थोड़े थोड़े से कैपिटल बढ़ाते जाओ मार्केट अपने आप देती जाएगी।
तो ये 1.5 लाख का कैपिटल, इसके बारे में तो हमारी बात ही नहीं हुई, ये पैसा कहाँ से आ गया?
हाँ सर ये देखिए, अभी 1.5 लाख का जो कैपिटल है ना सर, मैंने फिर बाद में ये सब होने बाद मैंने क्या सोचा कि अभी मैं छोटे से शुरुआत करता हूँ, मतलब सीखना भी होगा मेरा। अब ये बोलिंजर बैंड पे ही बता रहा हूँ सर, हमें सीखना भी होगा मेरा और ये भी होगा। तो मैंने 5,000, मैंने मन में डिसाइड कर दिया कि मैं 5,000 रुपये हर महीने डाला करूँगा, 5 से ऊपर नहीं डालूँगा। और मुझे जब ज़रूरत लगे समझे, जो प्रॉफिट हुआ तो मैं निकल लूँगा, नहीं ज़रूरत रही तो उसमें वो कैपिटल बढ़ते रहे। तो ऐसे करते करते सर मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, पिछले 6 महीने से।
6 महीने से 1.5 लाख का कैपिटल बना लिया है?
हाँ, 5,000 से 1.5 लाख तक आया, कुछ उसमें प्रॉफिट है। और बाद में हर महीने जो डिसाइड किया था 5,000 ऐड करूँगा, कभी अभी समझो फेलोशिप आए मुझे PhD की तो कभी थोड़ा बहुत पैसा तो वो भी थोड़ा उसमें ऐड किया है। पर यही इसी स्टेप से मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर, और आगे जाके मैं अभी नए ये दिवाली के पीरियड से सोच रहा हूँ कि 20,000 की अमाउंट बढ़ाते जाओ, क्योंकि अभी मुझे दिख रहा है कि पिछले 6 साल से मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल रहा हूँ। कर
नहीं तो अभी काफ़ी लोग थोड़ा विश्वास करने में फाइट हो जाएगा उनको कि 5,000 के कैपिटल से 1.5 लाख रुपया 6 महीने में बनाना नामुमकिन टाइप सुनता है।
मैं बोल रहा कि हर महीने में 5,000 डाला भी करता था, वो प्रॉफिट का अमाउंट भी उसमें होता था। और जब मेरी समझो PhD की फेलोशिप आई थी तो उसमें से भी मैंने अमाउंट उसमें डाला हुआ, ये बता रहा हूँ।
अच्छा, तो मतलब ये सारा प्रॉफिट नहीं है, 5,000 पर मंथ डालते तो 30,000 डाल दिया, ऊपर से कुछ और डाल दिया होगा तो उसके बेस पे 1.5 लाख बना है। ओके,
मतलब मैं 5,000 तो फिक्स डालूंगा सर महीने में, और अगर कुछ ऐसा बचा हुआ बाकी का पैसा जो मुझे नीड नहीं जिसकी तो वो डाल दूंगा, अगर नीड है तो नहीं डालूंगा।
तो अभी जब पहले 2 मिनट में हम जब बात कर रहे थे कि जी मेरे को ना 25,000 रुपया कमाना है 20,000 के कैपिटल से, और आज 1.5 लाख के कैपिटल से 5,000 रुपया कमा रहे हो तो अब थोड़ा रियलिस्टिक लगता है कि ये पॉसिबल है 1.5 लाख से 5,000 रुपया कुछ ना कुछ लेवल पे निकाला जा सकता है।
हाँ सर बिल्कुल,
थोड़ा रियलिटी तो यही है ना।
मेरा हाई मतलब मैं बोल रहा हूँ सर 5 नहीं 12 से 16 हजार तक बना लेता हूँ सर मैं 1.5 लाख पे।
अच्छा, 1.5 लाख में मतलब 10% निकाल रहे हो तुम? 8%
और वो भी 3 या 4 स्टॉक पिक करते ही सर। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि इक्विटी में भी पैसा बन सकता है सर, ऐसा नहीं कि नहीं। आजकल सर सब लोग ऑप्शंस की तरफ आगे जा रहे हैं, इक्विटी को मतलब अगर कोई इक्विटी कर भी रहा हो ना तो मतलब उसको वैल्यू ही नहीं दे रहा कोई, वो बोलता रहे यार ऑप्शन अच्छा है।
देगा।
हाँ, पेशेंस लगते हैं सर इसमें इक्विटी में।
अगर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलते हो कि 2,000 का नुकसान और 6,000 का प्रॉफिट, तो अगर वो पोजीशन नहीं बन पा रही, 6,000 नहीं 3,500 पे रुकी हुई है और हो गए हैं 20 दिन, तो पोजीशन काटते कैसे हो?
नहीं सर, काटता बिल्कुल नहीं। एक तो SL एक्सेप्ट कर लूँगा, या फिर ये टारगेट मतलब 1:2 अगर हुआ हो तो एग्जिट कर लूँगा सर, पर 1:2 से कम हो तो SL ले लूँगा, पर काटता नहीं, डिसिप्लिन में रहता हूँ सर, बिल्कुल डिसिप्लिन। जो मैंने ट्रेड लेते वक्त जर्नलिंग की होती है, जो रफ बुक में मैंने लिखा होता है सर कि मैं इसी टारगेट पे काटूंगा, इसी पे SL एक्सेप्ट करूंगा, उसमें मैं फिक्स रहता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता है कल मार्केट गिरने वाली, ठीक है ना, SL हिट होगा तो होने दो, कोई बात नहीं, वो तो होना ही है।
नहीं बट कभी कभी तो होगा यार, चल कोई नहीं, 500 निकाल लिया बहुत है, आगे चलते हैं, कैपिटल निकाल लेते हैं अपना।
ये हुआ है सर, बहुत बार हुआ है, और तब मैंने यही नोटिस किया है सर कि इसमें क्या होता है ना कि हम प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाते। हमें दिखता है कि प्रॉफिट तो हो रहा है, पर हम ऐसे लीड जब करते हैं, ओवरऑल जब हम टैली करते हैं सर तो हम प्रॉफिटेबल नहीं रहे, पर डिसिप्लिन की वजह से हम प्रॉफिटेबल रहे।
मैं ना तुम्हें चेक ही कर रहा था, जो क्योंकि तुमने 2-4 मिनट 5 मिनट पहले एक बात कही थी कि पोजिशन पकड़ के रखना ज़रूरी है, हम पोजिशन नहीं पकड़ना भूल जाते हैं। और मैं उसी चीज़ पे देख रहा था कि कहीं तुम थोड़ा फिसलते हो कि पोजीशन काट लेते हो पर पोजीशन नहीं काटते हो।
पहले किया करता था सर, पहले थोड़ा फेयर रहता था तो पहले किया करता था, और अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं, अभी स्टिक रहता हूँ सर डिसीजन। हाँ, 1:3 का टारगेट 1:2 अगर हो गया तो पोजीशन काट लेता हूँ मैं, बहुत दिन अगर हो गए मार्केट साइडवाइज हो रहा है तो काट लेता हूँ, पर 1:2 से कम पे नहीं काट।
ये चीज़ ना टेक्निकल स्किल और रिस्क मैनेजमेंट के अलावा पोजीशन साइजिंग, हालांकि पोजीशन साइजिंग भी रिस्क मैनेजमेंट का एक हिस्सा है या साइकोलॉजी का एक हिस्सा ही है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को कदर नहीं कर पाते और प्रॉफिट देख के अपना टारगेट प्राइस को रिस्पेक्ट नहीं करते, स्टॉप लॉस को भी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो कहते हैं कि चलो एग्जिट मार लेते हैं और नेक्स्ट पोजीशन वैसे बना लेंगे, बट दैट शुड नॉट बी द केस।
बिल्कुल सर, मैं सुबह सुबह जब उठता हूँ ना, जब अगर स्विंग ट्रेड अगर मैंने लिया है 9:15 बजे, मुझे कोई मतलब नहीं सर मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, निफ्टी क्या कर रही है, मैं बस जो मेरे स्टॉक ले आए मैंने जो बुक में लिखा होता है या मेरे एक्सेल शीट पे डाला हुआ है वो एसएल में देने उसमें डाल, ये मेरा काम है, बाद में मैं देखता भी नहीं, मतलब मेरे को स्क्रीन देखना बिल्कुल पसंद नहीं है फिर भी पैसा कमाना पसंद, और ये सबसे अच्छा मुझे स्विंग ट्रेडिंग में ही पसंद आता है कि बस अपना जब ट्रेड हो जाए दो ट्रेड अपने हो जाए तो वापस तीसरा चौथा ट्रेड ढूंढ दो, बस उसी वक्त मेहनत करो बाद में कोई मेहनत।
अच्छा ये स्टॉक सिलेक्शन में कितना टाइम जाता है कि कोई फर्क कोई टाइम ऐसा नहीं है रेंज नहीं है?
नहीं जाता है सर, बिल्कुल जाता है। अभी देखिए सर कभी 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 क्या होता है सर अपॉर्चुनिटीज ना 10-12 स्टॉक एक आ जाती है,
10-12 स्टॉक्स, ओके
100 में से कभी कभी 10-12 स्टॉक में अपॉर्चुनिटी आ जाती है, और कभी कभी तो किसी में नहीं आती तो निफ्टी 200 की तरफ जाना पड़ता है तो उसमें से चूज करना थोड़ा हार्ड हो जाता है सर, डिफिकल्ट हो जाता है, पर फिर उसमें भी सर मैं क्या देखता हूँ कि जिसने रेड कैंडल्स जो है गिरते वक्त वो कम बनाए हो ऐसे में चूज कर लेता हूँ, क्योंकि अगर लोअर बैंड की तरफ आ रहा है तो वो रेड कैंडल बनाते या तो उस वक्त मैं सिर्फ इतना देखता हूँ कि रेड कैंडल्स किसने कम बनाए, वो फिर मैं स्टॉक लिख के रखता हूँ और वो फिर उनमें से वो दो चॉइस मतलब स्टॉक में चूज कर,
वॉल्यूम भी चेक कर लिया, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी चेक कर लिया, ट्रेंड भी चेक कर लिया और उसके बेस पे पोजीशन बना ली, क्वांटिटी भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ पिक करते हो। कैपिटल का कितना हिस्सा कितना परसेंटेज एक पोजीशन को दे देते हो?
अभी मैं जो है वो 5% सर पूरी ओवरऑल कैपिटल की मैं करता हूँ, तो उसमें से 2.5% एक के लिए और 2.5% एक के लिए, ऐसे मैं दो दो ही हर बार लेता हूँ, और उसमें से कोई एक टारगेट हो जाए या एक स्टॉप लॉस हो जाए तो फिर एक ही स्टॉक ढूंढता हूँ वापस, मतलब मैं दो दो के जोड़ी से ही स्टॉक लेता हूँ।
अच्छा थोड़ा बताओ उसके बारे में, फॉर एग्जांपल के साथ।
एग्जांपल देखिए सर, अगर मैंने कोई स्टॉक खरीदा, मतलब आज मैंने देखा आज मेरे पास पैसे मैंने स्टॉक में लिया, मैंने दो स्टॉक फिल्टर करके निकाल लिए और मैंने वो कल सुबह बाय कर लिए दो स्टॉक, वो बाय कर लिए मैंने, और फिर अगर उसमें से कोई 8 दिन में या फिर 5 ही दिन में अगर किसी ने मुझे टारगेट दे दिया तो मैं क्या करूँगा फिर, अभी उस जिस दिन मुझे टारगेट दे दिया उसके उसी दिन रात में बैठूँगा और एक स्टॉक में स्कैन करूँगा फिर वो चूज़ करके, और अगर दोनों में टारगेट मिल गए तो दो स्टॉक में चूज़ करूँगा, ऐसे में दो दो स्टॉक, अगर कभी कभी महीने में 6 स्टॉक हो जाते 5-4 ऐसा चलते रहता है, कभी 3 ही मिलते हैं।
अच्छा तो दो के मतलब एक पेयर हमेशा लेके चलते हो, और अगर एक ने टारगेट दे दिया या स्टॉप लॉस हिट हो गया उस केस में दूसरा ले आओगे?
फिर उसी रात बैठता हूँ और स्कैन करता हूँ।
एक अकेले को चलने नहीं देते, साथ चलना है किसी ने,